नमस्कार भारत, 24 मार्च दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। नॉर्वे के करीब समंदर में एक जहाज का इंजन फेल, सैकड़ों लोग फंसे, बचाव अभियान जारी। हरियाणा के गुरुग्राम में भीड़ के हमले का निशाना बने मुस्लिम परिवार की आप बीती।
मेरे बच्चे कह रहे हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने गांव चले जाएंगे।
पीड़ित परिवार के खिलाफ लामबंद हुए स्थानीय लोग।
फिर यहाँ पर बदमाश, हम मुसलमान को नहीं जाने देंगे, पूरी पंचायत अब इकट्ठी होगी।
और भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथियों ने 12 साल के बच्चे को पहले ढाल बनाया फिर मार डाला, पिता की जुबानी पूरी कहानी। खबरें चुनाव और खेल की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। नॉर्वे के पश्चिमी समुद्र तट के पास कल यात्रियों से भरा एक जहाज खतरे में फंस गया। जहाज में फंसे तकरीबन 1300 लोगों को बचाने का काम रात भर जारी रहा और बचाव दल के अनुसार करीब 1300 लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये जहाज नॉर्वे के शहर ट्रॉम्सो से स्टेवेंजर के सफर पर था। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं और 8 मीटर तक ऊंची उठती लहरों के कारण बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। बचाव अभियान में 5 हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। इटली ने चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड मुहिम का समर्थन किया है और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रोम में एक बैठक के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसिप कोंटे ने सहमति पत्र पर दस्तखत किए। इटली दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह का पहला देश है जो इस मुहिम में शामिल हुआ है। इससे पहले एक अन्य यूरोपीय देश पुर्तगाल भी पिछले साल दिसंबर में इसका हिस्सा बन चुका है। इटली के उद्योग मंत्री लुई डी मायो ने इस समझौते को इटली की जीत बताया है। उन्होंने कहा, आज के दिन मेड इन इटली की जीत हुई है, इटली जीता है और इटली की कंपनियों की जीत हुई है। सिल्क रोड पर दोनों देशों के बीच सहमति बेहद अहम है। ये समझौता तकरीबन 20 अरब यूरो का होगा। आज ही तकरीबन 2.5 अरब यूरो के समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। ये थे इटली के उद्योग मंत्री लुई मायो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन में ब्रेक्सिट पर दूसरे जनमत संग्रह की मांग को लेकर लंदन में विशाल प्रदर्शन हुआ। आयोजकों का दावा है कि प्रदर्शन में 10 लाख लोग शामिल हुए। ब्रेक्सिट को लेकर पिछले दिनों ही यूरोपीय यूनियन ने ब्रिटेन के लिए नई समय सीमा तय की है। अगर ब्रेक्सिट को लेकर ब्रितानी संसद कोई फैसला नहीं कर पाती तो उस स्थिति में ब्रेक्सिट की समय सीमा 22 अप्रैल तय की गई है। प्रदर्शन में लंदन के मेयर सादिक खान भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ब्रेक्सिट पूरी तरह से उलझी हुई प्रक्रिया थी। उन्होंने कहा, आखिरकार आप सभी ने जनमत संग्रह में मतदान किया था। आप जिस किसी भी पार्टी का समर्थन करते हों, लेकिन आप इस बात से सहमत होंगे कि ब्रेक्सिट पूरी तरह से एक अस्त व्यस्त प्रक्रिया थी। सरकार की यूरोपीय संघ से अलग होने की बातचीत उलझाऊ रही है। किसी ने भी जनमत संग्रह में खुद को गरीब बनाने के लिए वोट नहीं किया था। किसी ने भी हमें कमजोर करने के लिए वोट नहीं किया था। एक बात स्पष्ट है कि हमें देश को एकजुट करने के प्रयास करने चाहिए। ये थे लंदन के मेयर सादिक खान के शब्द। माली में हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी। हमलावर शिकारियों की ड्रेस पहनकर ओसोसागू गांव में गांव को घेर लिया और फुलानी चरवाहों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। नज़दीकी गांव ओयनकोरो के मेयर चेक हारोना सनकारे ने इस घटना को नरसंहार करार दिया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ग्वाटेमाला में आपराधिक गिरोह के खिलाफ शुरू की गई बड़ी कार्रवाई में कम से कम 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में 8 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये आपराधिक गिरोह ड्रग्स से लेकर फिरौती वसूली तक में शामिल है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के उद्घाटन मुकाबले में कल डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई ने बेंगलोर की ओर से जीत के लिए मिला 71 रन का लक्ष्य 17.4 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार, भारत की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। नॉर्वे के करीब समंदर में कई सौ लोग एक क्रूज पर फंसे हुए हैं। इस जहाज का इंजन खराब हो गया था और इस बीच खराब मौसम ने लोगों की दिक्कतें और बढ़ा दी। जहाज में फंसे लोगों को बचाने के लिए रात भर अभियान जारी रहा। ये अभियान अब भी जारी है। हेलीकॉप्टरों के जरिए 100 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता दिनेश उप्रेती।
नॉर्वे के पश्चिमी समुद्र तट के पास कल यात्रियों से भरा एक जहाज खतरे में फंस गया। जहाज में फंसे तकरीबन 1300 लोगों को बचाने का काम रात भर जारी रहा और बचाव दल के अनुसार करीब 100 लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये जहाज नॉर्वे के शहर ट्रॉम्सो से स्टेवेंजर के सफर पर था। वाइकिंग स्काई नाम के इस जहाज के इंजनों में खराबी आ गई थी। उस पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं और 8 मीटर तक ऊंची उठती लहरों के बीच बचाव दल ने अपना अभियान शुरू किया। बचाव अभियान में 5 हेलीकॉप्टर और कई जहाजों की मदद ली जा रही है। एयरलिफ्ट कर निकाले गए एक यात्री डेरेक ने बताया, चारों तरफ कांच ही कांच था क्योंकि गिलास और दूसरे कांच के बर्तन टूटकर बिखर गए थे। फिर अचानक डाइनिंग रूम में एक लहर टकराई। ये इतना ताकतवर झटका था कि खिड़की टूट गई और समंदर का पानी अंदर आने लगा। ये थे जहाज के एक यात्री डेरेक के शब्द। वाइकिंग स्काई ने नॉर्वे के पश्चिमी शहर बर्जन से अपना सफर शुरू किया था। जहाज में अधिकतर यात्री ब्रिटेन और अमरीका के बताए जा रहे हैं। बचाव अभियान के प्रवक्ता आइनर कुटसन ने बताया कि बचाए गए यात्रियों को पास के शहर हस्टर्ड भेजा गया है। जो हम जानते हैं उसके मुताबिक जहाज के इंजन में खराबी आ गई थी और सिर्फ एक ही इंजन काम कर रहा था और ये तट से 2 किलोमीटर दूर था। यात्रियों को बचाने का काम शुरू किया गया है। जहाज में सैकड़ों लोग मौजूद हैं और उन्हें नजदीकी शहर के होटल में भेजा जा रहा है। ये थे बचाव अभियान के प्रवक्ता कुटसन के शब्द। नॉर्वे के पुलिस प्रमुख टोर आंद्रे ने भी भरोसा दिया है कि समय रहते जहाज में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। करीब 930 यात्रियों की क्षमता वाले इस जहाज के बाकी इंजनों को ठीक करने का काम भी किया जा रहा है।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती। अगली खबर भारत की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से। हरियाणा के गुरुग्राम में एक मुस्लिम परिवार पर बीते दिनों कुछ लोगों ने हमला किया था। इस हमले का वीडियो वायरल होने के बाद इस परिवार के समर्थन में आवाजें उठी। पुलिस भी सक्रिय हुई लेकिन इस परिवार की दिक्कतें अभी कम नहीं हुई है। पीड़ित परिवार और आसपास के लोगों से मुलाकात करने वाली बीबीसी संवाददाता कीर्ति दुबे ने वहां क्या देखा और सुना, आप भी सुनिए उनकी रिपोर्ट।
यहाँ पर मेरे नाना को मारा, वहाँ पर मेरे मामा को मारा, यहाँ पर नाना को मारा, तो वहाँ पर देखो खून है। ऊपर भी थे वे लोग। बड़ा वाला चाकू था ना, वो यहाँ पर मारा था उन्होंने पीछे से।
5 साल की अफीफा के दिल में अपने परिवार पर हुए हमले के बाद दहशत बैठ गई है। उन्हें डर है कि कहीं होली के दिन उनके परिवार पर हमला करने वाले दोबारा ना आ जाएं। ये डर साजिद को भी है जो होली की शाम हुए हमले में बुरी तरह घायल हो गए थे।
मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंसाफ। मैं बहुत आहत हूँ, मैं परेशान हूँ। मैं यहाँ से, मेरे बच्चे कह रहे हैं हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम अपने गांव चले जाएंगे। हम अपने गांव में मैं फेरी फिरता हूँ पर ये हाल देख के मैं नहीं रह पाऊँगा यहाँ पे। मैं अपनी फेरी यहाँ फिरता हूँ, वहाँ फिर लूँगा जाके। मेरे बच्चों की बाइक सब तोड़ दी, पूरा घर तोड़ दिया। मेरे पे ठीक कराने के लिए मेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं इसको ऐसे ही बेच के चला जाऊंगा।
गुरुग्राम के भौंडसी थाने के भूप सिंह नगर इलाके में साजिद और उनके परिवार पर हुए हमले का वीडियो बहुत मुमकिन है कि आपने अब तक देख लिया होगा। ये वीडियो उनके परिवार की ही एक लड़की दानिश्ता ने बनाया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देश भर में इस घटना पर संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं। दानिश्ता बताती हैं कि कैसे हमले से बचते हुए उन्होंने ये वीडियो बनाया।
लड़कियां थी, हम सब जितनी भी 3-4 लड़कियां गए थे, हम सबको बोलने लगे तुम ऊपर छत पे जाके गेट बंद कर लो, ऊपर छत पे जाके गेट बंद कर लो। सब गेट बंद कर रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे वीडियो बनानी, हाथ में फ़ोन था, मैंने क्लिक किया, जैसे मैं चिल्ला रही थी चीख रही थी तो उन्होंने ऊपर की साइड देख रहा कि वो बोले वीडियो बना रहे, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगे तुरंत, वो कह रहे इसका फ़ोन छीन लो, ये कर लो। मैं पहुँचा, कोई था ही नहीं पास में जो छिपाता, इसलिए मैंने हमारे यहाँ पे जो टैले रखे हुए उनके बीच में फ़ोन डाल दिया। मैंने कहा मेरा फ़ोन सेफ है, अगर वो हमें मारेंगे तो मुझे ही मारेंगे, पर लेकिन फ़ोन तो नहीं मिल पाएगा।
इसी बीच यहाँ के लोगों का कहना है कि वो अब इस परिवार को इस इलाके में नहीं रहने देंगे और जल्द ही इस मुद्दे पर पंचायत बुलाएंगे।
फिर यहाँ पर बदमाश हम मुसलमानों को नहीं रहने देंगे, पूरी पंचायत अभी इकट्ठी होगी, दो दिन बाद पंचायत और पूरे गांव का इकट्ठा होने वाला है, और निर्दोष हमारे भाइयों को पकड़ रहे हैं, यहाँ पर हमारे बेटों को पकड़ रहे हैं, हमारे भाइयों को पकड़ रहे हैं जी। मैडम जी, गांव में एक भी बानी ने भी खाना नहीं खाया, एक माता ने खाना नहीं खाया, एक बुजुर्ग ने भी खाना किया, चिंता में बैठे हैं यहाँ पर कि क्या हो गया गांव में।
मामले के सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और बाकियों की तलाश जारी है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता सुभाष बुकेन कहते हैं,
उसने जो विक्टिम ने जो कंप्लेंट दी थी उसमें अननोन के खिलाफ, वो किसी को जानता नहीं था, तो उसने दी थी कि भाई कुछ लोग थे जिनको मैं नहीं जानता, तो अननोन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर वीडियो देख के पहचान की, तो एक पहचान की है, फिर एक उनमें से अरेस्ट कर लिया है, बाकी की आइडेंटिफाई करके और फिर अरेस्ट उनका प्रोसेस चल रहा है।
इस मामले में पीड़ित परिवार, पुलिस और हमलावरों के अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है उसने भीड़ के हमले के सवाल को एक बार फिर उठाया है और पूछा जा रहा है कि भारत में इस तरह के हमले कब रुकेंगे। गुरुग्राम के भौंडसी इलाके से कीर्ति दुबे, BBC।
भारत प्रशासित कश्मीर के बांदीपोरा में चरमपंथियों ने एक 12 साल के बच्चे को अपनी ढाल बनाया और बाद में उसे मार दिया। हमारे साथी माजिद जहांगीर ने उस बच्चे के परिवार वालों से मुलाकात की, सुनिए उनकी रिपोर्ट।
ये थी 12 साल के आतिफ अहमद मीर की माँ शरीफा बानो, जो उनके घर में छुपे चरमपंथियों से माइक्रोफोन पर गुहार लगा रही थी कि उनके बेटे आतिफ और उनके चचा अब्दुल हमीद को छोड़ दिया जाए। वो बता रही थी कि खुदा के वास्ते उनको बाहर आने दिया जाए, हमसे आखिर क्या खता हुई है, मैं तो आप लोगों को खाना दिया करती थी। ये थे शरीफा बानो के शब्द, लेकिन उनकी इस अपील से चरमपंथियों पर कोई असर नहीं हुआ। आतिफ मीर के एक दूसरे रिश्तेदार ने भी चरमपंथियों से माइक्रोफोन पर आतिफ और हमीद को रिहा करने की अपील की, लेकिन चरमपंथी नहीं माने। ये बता रहे थे कि आतिफ और उनके चचा को बाहर आने दिया जाए, ये कैसा जिहाद है। दोनों का यह वीडियो जिसमें चरमपंथियों से आतिफ और चचा अब्दुल हमीद को छोड़ने की अपील की जा रही थी, मुठभेड़ खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आतिफ और उनके चचा अब्दुल हमीद मीर को चरमपंथियों ने उनके ही घर में बंधक बनाया। घर को गिरने के बाद घर के 6 लोग किसी तरह बाहर आ गए, लेकिन आतिफ और उनके चचा को चरमपंथियों ने घर से बाहर जाने नहीं दिया। लेकिन कुछ घंटों के बाद अब्दुल हमीद चरमपंथियों को चकमा देकर बाहर आ गए, लेकिन आतिफ अंदर चरमपंथियों के पास ही फंस गए। आतिफ अहमद के पिता मोहम्मद शफी मीर एक टेंट में बैठकर खामोशी से अपने बेटे की मौत का मातम अपने उजड़े घर के पास, जो कि मुठभेड़ के दौरान तबाह हो गया, मना रहे थे। उनका कहना था, वो बता रहे थे कि गुरुवार का दिन था जब हमारे घर को सुरक्षा बलों ने घेरा, हम 6 लोग किसी तरह बाहर आ गए, लेकिन मेरे बेटे और भाई को चरमपंथियों ने घर से बाहर जाने नहीं दिया। हमने उन्हें बाहर लाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन चरमपंथी नहीं माने। हमने माइक्रोफोन पर बार बार उनसे अपील की, पुलिस ने अपील की, लेकिन वो नहीं माने। उनके दिमाग में शायद ये चल रहा था कि बच्चे को अपने साथ रखकर सुरक्षा बल उन्हें नहीं मारेंगे और वो इसी बहाने घेरा तोड़कर भाग जाएंगे। मेरा बेटा फिर कर भी क्या सकता था, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा बेटा मारा गया। ये थे मोहम्मद शफी मीर के शब्द। पुलिस का कहना था कि 9 घंटों तक सुरक्षा बलों ने इंतजार किया कि बच्चे को किसी तरह से बाहर लाया जाए। बांडीपोरा के SP राहुल मलिक,
वी ट्राइड टू टेक आउट देम, वी गॉट Many things.
वो बता रहे थे कि हमने परिवार वालों से और दूसरे लोगों से चरमपंथियों को माइक्रोफोन पर अपील करवाई कि बच्चे को छोड़ा जाए, लेकिन वो नहीं माने। हमने बहुत सब्र से काम लिया। आखिरकार हमने उस मकान पर दावा बोला जहां चरमपंथी छुपे हुए थे। ये थे एसपी राहुल मलिक के शब्द। पुलिस ने इस मुठभेड़ में दो लश्करी तैयबा के चरमपंथियों को मारने का दावा किया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि दोनों चरमपंथी पाकिस्तानी नागरिक थे। बीती एक दशक में पहली बार कश्मीर में ऐसा हुआ है जब एक मासूम बच्चे को चरमपंथियों ने बंधक बनाया हो। आतिफ अहमद छठी क्लास का छात्र था। हाजिन इलाके में पहले भारत समर्थक इख्वान दस्ते का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब यह इलाका पाकिस्तानी चरमपंथियों का गढ़ बन चुका है। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
और अब भारत की राजनीति से जुड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने बड़ी चुनौती दी है। कांग्रेस ने उन्हें भोपाल सीट से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने यह सीट आखिरी बार साल 1984 में जीती थी। सुनिए भोपाल से शुरन नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को एक कार्यक्रम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए घोषणा की कि दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। भोपाल की सीट पर आखिरी बार कांग्रेस के प्रत्याशी ने 1984 में जीत दर्ज की थी। कमलनाथ से जब दिग्विजय सिंह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा,
देखिए दिग्विजय सिंह जी को आप जानते हैं, उन्होंने भी कहा, मैंने उन्हें ये निवेदन किया था कि आप इतने साल अध्यक्ष हैं, इतने साल मुख्यमंत्री रहे और आप कहेंगे कि मैं राघोगढ़ से चलूंगा, तो ये बात जचती नहीं है। मैंने चॉइस की कि आप भोपाल से लड़ लो, इंदौर से लड़ लो, जबलपुर से लड़ लो। तो मैंने उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सोचता हूँ, मैं चुनाव लड़ता ही हूँ, पहले ये सब बातें करी। तब उन्होंने अंत में मुझे कहा कि आप ही तय करो। मैंने कहा ठीक है, मैंने तय कर लिया। तो उन्होंने कहा आप मुझे बता दीजिए। मैंने कहा भोपाल से लड़ लीजिए। ठीक है, मैं भोपाल से लड़ूँ।
हालांकि दिग्विजय सिंह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि पार्टी उन्हें जहां से भी लड़ाएगी वहां से वह चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। दिग्विजय सिंह की घोषणा के बाद मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी प्रज्ञा ठाकुर ने भी उनके खिलाफ टिकट की मांग की है। प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा टिकट दे सकती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारा जा सकता है, लेकिन भोपाल जैसी सीट दिग्विजय सिंह के लिए किसी भी तरह से आसान नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया बताते हैं,
भोपाल की लोकसभा सीट की एक ऐसी सीट है जो 1984 तक कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट, क्रीड और रीजन की जो सर्जरी की और सुशील चंद्र वर्मा को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उतारा। सुशील चंद्र वर्मा मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं और कायस्थ समुदाय से आते हैं। यहाँ कायस्थ समुदाय के बड़े वोटरों की संख्या होती है। दूसरे सबसे बड़े वोटर ब्राह्मण मतदाता होते हैं। ऐसे में भोपाल वास्तव में दिग्विजय सिंह के लिए भी चुनौती है।
इस वक्त के भोपाल के सांसद आलोक संजर पिछला चुनाव 370,000 मतों से जीते थे। इस बार उन्हें टिकट मिलने की संभावना ना के बराबर है। वहीं भाजपा ने शनिवार को लोकसभा की जारी की गई सूची में मध्य प्रदेश के 29 में से 15 लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर की जगह मुरैना से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने मुरैना सांसद और अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनुप मिश्रा का मुरैना से, चिंतामण मालवी का उज्जैन से, ज्ञान सिंह का शहडोल से, ज्योति ध्रुवे का बैतूल से और भागीरथ प्रसाद का भिंड से टिकट काट दिया है। बाकी जगहों पर पुराने चेहरों को ही मौका दिया गया है। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
उधर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बुजुर्ग सांसद कड़िया मुंडा का टिकट भी काट दिया है। खूंटी सीट पर उनकी जगह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को उम्मीदवार बनाया गया है। क्या इस बदलाव से राज्य में बीजेपी के राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे? बता रहे हैं रवि प्रकाश।
गोड्डा श्री निशिकांत दुबे इज द सिटिंग एमपी फ्रॉम गोड्डा। धनबाद श्री पशुपतिनाथ सिंह। जमशेदपुर विद्युत वारण महतो। सिंहभूम श्री लक्ष्मण गिलुवा। खूंटी अवर एक्स चीफ मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर मुंडा।
यह आवाज भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की थी। शनिवार की शाम झारखंड के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए उन्होंने कहा कि खूंटी लोकसभा सीट से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। मतलब साफ था कि पार्टी ने 8 बार के सांसद और लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके कड़िया मुंडा का टिकट काट दिया है। वे 83 साल के हैं। भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने बताया कि उनको टिकट नहीं मिलने का कारण नीतिगत है, न कि व्यक्तिगत।
बीजेपी ने अच्छी बार एक नीतिगत एक निर्णय लिया है। 75 वर्ष से अधिक उम्र हो गया है, किसी जगह से उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता। ये नीतिगत फैसला है। आदरणीय कड़िया मुंडा जी ने उससे पहले कई बार केंद्रीय नेतृत्व के सामने इस बात को स्वीकार किया है यहाँ पर और चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी का कोई भी कार्य होगा, काम होगा तो उसको हम देखेंगे।
क्या भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बारे में करिया मुंडा से बातचीत की थी? करिया मुंडा ने कहा,
हमको तो असर नहीं करेगा क्योंकि पहले जब तय हो गया उम्र फैक्टर से कटेगा तो हमें अकेले है, बहुत कट गया।
हालांकि बीजेपी की झारखंड के लिए जारी पहली सूची में भाजपा ने 70 साल के पीएन सिंह को धनबाद, 67 साल के बीडी राम को पलामू और 66 साल के हेमलाल मुर्मू को राजमहल से चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी अगर 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को टिकट नहीं देने के फॉर्मूले पर कायम रही तो उसे रांची के मौजूदा सांसद रामटहल चौधरी का टिकट भी काटना पड़ेगा। वे 77 साल के हैं। वरिष्ठ पत्रकार मधुकर मानते हैं कि करिया मुंडा का टिकट काटना भाजपा को महंगा पड़ सकता है।
करिया मुंडा झारखंड के सबसे सीनियर लीडर है, जनसंघ के काल से लेकर के अभी तक पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बार जीत उन्होंने ही दर्ज कराई है। ऐसे में करिया मुंडा को हटाना भाजपा के लिए बहुत नुकसानदायक होगा।
इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि भाजपा में बुजुर्ग नेताओं की कोई इज्जत नहीं है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि करिया मुंडा का टिकट काटकर और अर्जुन मुंडा को संसदीय सीट से लड़ाकर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि वह आदिवासियों की विरोधी पार्टी है। इस बीच भाजपा उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। संभव है कि आज शाम तक महागठबंधन भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दे। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
एनडीए ने बिहार में भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट नहीं दिया गया है तो गिरिराज सिंह की सीट बदल दी गई है। उधर सीपीआई माले ने राजद गठबंधन से अलग 5 उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट।
एनडीए के तीनों घटक दलों ने शनिवार को संयुक्त प्रेस वार्ता कर 40 में से 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। एक बची रह गई सीट खगड़िया की है जो लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में गई है और ऐसा कहा गया है कि पार्टी जल्दी ही इसकी भी घोषणा कर देगी। एनडीए के घटक दलों भाजपा, लोजपा तथा जदयू के प्रदेश अध्यक्षों की मौजूदगी में भाजपा के भूपेंद्र यादव ने उम्मीदवारों की सूची पढ़ने से पहले कहा,
19 के लोकसभा चुनाव में एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो हमारा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक मजबूत सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
एनडीए की ओर से जारी सूची में जो नाम सबसे अधिक चर्चा में है उनमें से एक है मौजूदा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का। प्रसाद को पटना साहिब सीट से उम्मीदवार बनाया गया है जहां से इसके पहले भाजपा के लिए शत्रुघ्न सिन्हा सांसद थे। चर्चा है कि सिन्हा इसी सीट से यूपीए की ओर से लड़ेंगे, हालांकि उन्होंने अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है। नवादा से सांसद रहे गिरिराज सिंह को इस बार बेगूसराय से उतारा गया है। एनडीए के उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट की बात करें तो उसमें सिर्फ एक अल्पसंख्यक चेहरा है, किशनगंज से जदयू के महमूद अशरफ मैदान में हैं। इसके अलावा लिस्ट में 3 महिला चेहरे हैं, शिवहर से भाजपा की रमा देवी, सिवान से जदयू की कविता सिंह और वैशाली से लोजपा की वीणा देवी को टिकट मिला है। शनिवार को ही शाम ढलते ढलते एक और घोषणा सीपीआई माले की ओर से कर दी गई। पार्टी ने यूपीए गठबंधन से खुद को अलग रखते हुए 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ये सीटें हैं आरा, जहानाबाद, काराकाट, पाटलिपुत्र और सिवान। बीबीसी से बात करते हुए सीपीआई एमएल के प्रदेश सचिव कुणाल ने कहा,
कल जिस तरह से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा किया गया उसकी घोषणा की गई, हम समझते हैं कि जो बिहार की जो जमीनी हकीकत है, परिस्थिति की जो मांग है उसको नज़रअंदाज किया गया है और जो भाजपा विरोधी जो व्यापक मतों के ध्रुवीकरण की जो संभावना थी उस संभावना को इसने कमजोर किया है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिन सीटों से माले के कैंडिडेट लड़ेंगे वहां से यूपीए के उम्मीदवारों के लिए मुश्किलें आएंगी। नीरज प्रियदर्शी, बीबीसी पटना।
और अब आज के अखबारों की बात दिनेश उप्रेती के साथ। जी दिनेश जी, क्या
जी वासल जी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के केरल से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना को पहली खबर बनाया है। अखबार लिखता है कि राहुल दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करने और अल्पसंख्यक मतदाताओं को सकारात्मक संकेत देने के लिए केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।
स्मृति ईरानी भी ट्विटर पर काफ़ी चुटकी ले रही हैं इस खबर को लेकर।
हाँ, राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से लड़ने की घोषणा क्योंकि पहले ही हो चुकी है
जी।
इसके अलावा अखबार ने शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस में शामिल होने और पटना साहिब से भाजपा के रविशंकर प्रसाद के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने की खबर भी प्रकाशित की है।
दिलचस्प मुकाबला हो सकता है इस सीट पर।
जी इंडियन एक्सप्रेस ने उत्तर प्रदेश में किसानों का चीनी मिलों पर 10,000 करोड़ रुपए बकाया होने की खबर पहले पन्ने पर छापी है। खबर के मुताबिक इसमें से 45% बकाया उन 6 लोकसभा क्षेत्र के किसानों का है जिनमें पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण में कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। इंडियन एक्सप्रेस ने वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को नया नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की खबर पहले पन्ने पर छापी है। लांबा करमबीर सिंह मौजूदा नेवी चीफ सुनील लांबा की जगह लेंगे। करमबीर पहले हेलीकॉप्टर पायलट होंगे जो कि नौसेना के अध्यक्ष बनेंगे।
दिनेश जी आपके पास उर्दू अखबार भी हैं। इकबाल साहब ने जो समीक्षा तैयार किया श्रोताओं को वो भी बताएं कि उर्दू अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी इस हफ्ते।
जी पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की बात की जाए तो इस हफ्ते न्यूजीलैंड में मस्जिद में हुए हमले, मलेशिया में प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा, पाकिस्तान दिवस, समझौता एक्सप्रेस बम धमाके केस के फैसले से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रही। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में शुक्रवार 15 मार्च को एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे मुसलमानों पर अंधाधुंध गोली चलाकर एक व्यक्ति ने 50 लोगों की जान ले ली थी। मरने वालों में 9 पाकिस्तानी भी थे। दुनिया भर के अखबारों की तरह पाकिस्तान के अखबारों में भी ये खबर पूरे सप्ताह सुर्खियों में रही।
जी
पाकिस्तान ने दुनिया भर में इस्लाम धर्म से बढ़ रही नफरत को कम करने और उस पर काबू पाने के लिए मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर 3 देशों का एक संयुक्त फ्रंट बनाने का सुझाव दिया है। इसके अलावा अखबार एक्सप्रेस के अनुसार पाकिस्तान की यात्रा पर आए मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ खौफ और दुश्मनी फैलाई जा रही है और इससे लड़ने के लिए पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की को साथ आना होगा। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड मस्जिद पर हमले पर भारत के रुख की भी आलोचना की। अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत एक तरफ तो इस्लामी देशों के संगठन को हिस्सा बनाना चाहता है लेकिन मुसलमानों के मामले में जब बोलने का मौका आता है तो भारत पर खामोशी छा जाती है।
बहुत शुक्रिया दिनेश जी। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। पिछली चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने कल से शुरू हुए 12वें आईपीएल के पहले मैच में विराट कोहली की कप्तानी में खेलने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 7 विकेट से हरा दिया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल रही चेन्नई के सामने जीत के लिए केवल 71 रनों का लक्ष्य था जो उसने अंबाती रायडू के 28, सुरेश रैना के 19 और केदार जाधव के नाबाद 13 रन की मदद से 17.4 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर बेंगलोर का पुलिंदा 17.1 ओवर में ही महज 70 रनों पर बंद गया। पार्थिव पटेल ने 29 रन बनाए लेकिन कप्तान विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और एटमायर जैसे धुरंधर बल्लेबाजों सहित बाकी सभी खिलाड़ी दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंचे। चेन्नई के हरभजन सिंह ने पुराने चावल किसी महक बिखेरते हुए 20 रन देकर 3 और इमरान ताहिर ने भी केवल 9 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। स्पिन के लिए मददगार पिच पर रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट लेकर अपने हाथ साफ किए। आज आईपीएल में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से और दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी कोच परवीन आमरे ने बीबीसी से खास बातचीत में बताया कि क्यों खास है शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की जोड़ी।
शिखर जैसा है जो 11-12 आईपीएल खेला हुआ प्लेयर है, पृथ्वी जो एक ही आईपीएल खेला हुआ है बट एक उभरता टैलेंट है, उसमें वो स्पार्क है क्योंकि हम भी टेस्ट क्रिकेट खेले हैं बट टेस्ट क्रिकेट में 2.5 घंटे में 100 करने वाला कोई स्पेशल प्लेयर होता है वो शिखर लेफ्टी राइटी है और दिल्ली का शिखर होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मुझे लगता है कि ये फॉर्मेट में फेयरलेस होना बहुत जरूरी है और ये दोनों में क्षमता है। वो
उधर मलेशिया के इपोह शहर में कल से शुरू हुए सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत करते हुए जापान को 2-0 से हराया।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। नॉर्वे के पश्चिमी समुद्र तट के पास जहाज में फंसे तकरीबन 1300 लोगों को बचाने का काम जारी है। बचाव दल के अनुसार करीब 100 लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाल लिया गया है। इटली ने चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड मुहिम का समर्थन किया है और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटेन में ब्रेक्सिट पर दूसरे जनमत संग्रह की मांग को लेकर लंदन में विशाल प्रदर्शन हुआ। आयोजकों का दावा है कि प्रदर्शन में 10 लाख लोग शामिल हुए। माली में हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी है। इंडियन प्रीमियर लीग के उद्घाटन मुकाबले में कल डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया। ग्वाटेमाला में आपराधिक गिरोह के खिलाफ शुरू की गई बड़ी कार्रवाई में कम 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे अजीत सारथी। आपसे अगली मुलाकात शाम के वक्त 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक खबरों की जानकारी के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।